एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज की ज्ञान गोष्ठी में हम चीन के एक ऐसे लेखक की दुनिया में उतर रहे हैं जिनकी कलम ने सिर्फ कहानियां नहीं लिखी बल्कि एक पूरे राष्ट्र की आत्मा को झकझोर दिया।
हाँ।
हम बात कर रहे हैं लू शुन की, जिन्हें आधुनिक चीनी साहित्य का जनक माना जाता है। उनका असली नाम था झाओ शूरेन, लेकिन इतिहास उन्हें लू शुन के नाम से याद रखता है।
बिल्कुल, और जनक शब्द यहाँ शायद थोड़ा छोटा पड़ जाता है। लू शुन एक विचारक थे, एक समाज सुधारक थे और सबसे बढ़कर एक सांस्कृतिक योद्धा थे।
सांस्कृतिक योद्धा
जी, उनकी लेखनी एक आईना थी जिसमें 20वीं सदी की शुरुआत का चीन अपना बिखरा हुआ वो बीमार सा अक्स देख सकता था। उन्होंने सदियों से चली आ रही जड़ परंपराओं पर ऐसे सवाल उठाए जो किसी धमाके से कम नहीं थे। वाकई
उनका दौर भी तो कुछ कम विस्फोटक नहीं था। 1881 से 1936 तक का उनका जीवन, सोचिए चीन कहां से कहां पहुंच रहा था। वो मरता हुआ चिंग राजवंश,
हाँ,
पश्चिमी ताकतों का बढ़ता शिकंजा, फिर 1912 में गणराज्य की स्थापना और उसके बाद की वो अराजकता, सरदारों का दौर, एक पूरी सभ्यता जैसे अपनी पुरानी खाल उतार रही थी।
और यही उथल पुथल, यही माहौल लू शुन के लेखन की पृष्ठभूमि बनता है। उन्हें समझना सिर्फ चीन के इतिहास को जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जब कोई संस्कृति गहरे संकट में होती है तो परंपरा और आधुनिकता के बीच कैसा संघर्ष होता है, व्यक्ति और समाज के बीच क्या तनाव पैदा होता है और ऐसे में साहित्य क्या भूमिका निभा सकता है। ये तो बड़े सार्वभौमिक सवाल हैं।
तो चलिए उस माहौल को थोड़ा और टटोलते हैं। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत का चीन, ये संकट कितना गहरा था?
बहुत गहरा दिखे। चिंग राजवंश का पतन सिर्फ एक राजनैतिक घटना नहीं थी, ये एक पूरी व्यवस्था का चरमराना था। विदेशी ताकतें चीन को एशिया का बीमार आदमी कहकर उसका शोषण कर रही थीं। देश के अंदर निराशा थी, भ्रम का माहौल था।
हर कोई एक रास्ता ढूंढ रहा था।
हाँ, हर कोई एक रास्ते की तलाश में था। राष्ट्रीय उद्धार कैसे हो, इस सवाल का जवाब खोजा जा रहा था।
और इसी तलाश ने शायद मई फोर्थ मूवमेंट या नई संस्कृति आंदोलन को जन्म दिया। ये सिर्फ सड़कों पर उतरना नहीं था, ये तो विचारों की एक बड़ी लड़ाई थी, है ना?
निश्चित रूप से मई फोर्थ मूवमेंट 1919 और उससे पहले शुरू हुआ नई संस्कृति आंदोलन, जो लगभग 1915 से 25 तक चला, चीन के बौद्धिक इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट है। ये सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं था, ये एक सांस्कृतिक क्रांति थी जिसका मकसद था चीन के सामंती अतीत की जड़ों पर प्रहार करना।
सामंती अतीत यानी वो कन्फ्यूशियसवाद और वो पुरानी मुश्किल साहित्यिक भाषा वेनयानवेन।
हाँ बिल्कुल, कन्फ्यूशियसवाद जिसे सदियों से पूजा जाता था उसे कटघरे में खड़ा किया गया, और साथ ही वेनयानवेन, वो क्लिष्ट शास्त्रीय साहित्यिक भाषा जो सिर्फ गिने चुने विद्वानों और अभिजाते वर्ग तक सीमित थी, उसे खारिज करने की बात हुई।
क्यों, मतलब क्या क्या दिक्कत थी उसे?
कहा गया कि ये भाषा आम लोगों से कटी हुई है और नए विचारों को, आधुनिक विचारों को व्यक्त नहीं कर सकती, वो बंधनों वाली भाषा थी।
तो फिर अपनाया क्या गया, किन नए विचारों का स्वागत हुआ?
दो बड़े नारे गूंजे, मिस्टर साइंस और मिस्टर डेमोक्रेसी।
अच्छा,
यानी विज्ञान और लोकतंत्र को चीन के भविष्य का आधार माना गया और साहित्य में जोर दिया गया बाईहुआ पर, यानी आम बोलचाल की भाषा,
आम लोगों की भाषा।
हाँ, विचार ये था कि साहित्य इसी भाषा में लिखा जाना चाहिए ताकि वो जनता तक पहुंचे, उन्हें जगाए। माहौल पूरी तरह से पुरानी मान्यताओं को तोड़ने वाला था, मूर्ति भंजन का दौर था एक तरह से।
उस दौर के न्यू यूथ शिनशिनियन जैसी पत्रिकाओं ने जरूर इन विचारों को फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई होगी।
बिल्कुल, ये पत्रिकाएं मंच बनी हैं नए विचारों के लिए।
और लू शुन अकेले तो नहीं थे, उनके साथ और कौन लोग थे इस वैचारिक मंथन में?
कई बड़े नाम थे, जैसे हुशी, जिन्होंने बाईहुआ के प्रयोग की जोरदार वकालत की। चेन दुशियू थे, जो बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक बने। लियांग चिकाओ, घुओ मुरुओ, बाजीन, कई लोग थे।
और बाहरी प्रभाव पश्चिमी या रूसी साहित्य का?
हाँ हाँ, वो भी जबरदस्त था। नीचे और डार्विन के विचार, इब्सन के नाटक और रूसी साहित्य, खासकर गोगोल और चेखव का यथार्थवाद, आंद्रेव, इन सब ने चीनी लेखकों को बहुत प्रभावित किया।
यानी एक तरफ देश टूट रहा था, बन रहा था बॉक्सर विद्रोह, चिंग का पतन, गणराज्य, फिर सरदारों का युग, और दूसरी तरफ दुनिया भर के विचार टकरा रहे थे। ऐसे में साहित्य की भूमिका तो बहुत अहम हो गई होगी।
बहुत ज्यादा। साहित्य को सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज का दर्पण और भविष्य का दीपक माना जा रहा था। लेखकों पर एक भारी जिम्मेदारी आ गई थी।
इसी माहौल में लुशुन का व्यक्तिगत जीवन आकार ले रहा था। उनके शुरुआती दिनों के बारे में बताइए, क्या कोई ऐसी घटना थी जिसने उन्हें इतना विद्रोही या आलोचक बनाया?
झाओ शुरेन यानी लुशुन का जन्म 1881 में झेजियांग प्रांत के शाओशिंग शहर में हुआ था। परिवार पढ़ा लिखा सम्मानित था, मध्यम धनी कह सकते हैं।
अच्छा।
लेकिन उनके बचपन में ही परिवार की किस्मत पलट गई। उनके दादा जो सरकारी अधिकारी थे, रिश्वतखोरी के आरोप में जेल चले गए।
ओहो, तो ये एक बड़ा झटका रहा होगा परिवार के लिए।
बहुत बड़ा। परिवार अचानक गरीबी और सामाजिक अपमान के गर्त में गिर गया। इस अनुभव ने कम उम्र में ही लुशुन को सामाजिक पाखंड का, समाज के दोहरेपन का कड़वा स्वाद चखा दिया।
पिता की बीमारी का भी जिक्र आता है।
हाँ, उनके पिता लंबे समय तक तपेदिक से पीड़ित रहे और लुशुन ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे पारंपरिक चीनी दवाइयाँ, वो पुराने तरीके, उनके पिता को बचाने में नाकाम रहीं। ये अनुभव उनके मन में पारंपरिक व्यवस्था के प्रति एक गहरा संदेह पैदा कर गया। चिकित्सा की लाचारी और समाज का पाखंड, दोनों उन्होंने बहुत करीब से देखे।
उनकी शिक्षा कैसे हुई, पारंपरिक या फिर पश्चिमी?
शुरुआत तो पारंपरिक कन्फ्यूशियस शिक्षा से हुई सानवे स्टडी हॉल में, लेकिन जल्द ही उनका रुझान पश्चिमी शिक्षा की ओर हो गया। वो नानजिंग गए, पहले नेवल एकेडमी में, फिर स्कूल ऑफ माइंस एंड रेलवे में। यही उनका परिचय पश्चिमी विज्ञान और सोच से हुआ।
और फिर उनका जापान जाना हुआ मेडिकल की पढ़ाई के लिए। ये थोड़ा चौंकाता है, साहित्य की दुनिया से एकदम अलग।
हाँ, 1902 में वे मेडिकल पढ़ने जापान के सेंडाई शहर गए। उनका इरादा नेक था, वे डॉक्टर बनकर अपने देशवासियों के शारीरिक कष्ट दूर करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि चीन को मजबूत बनाने के लिए स्वस्थ नागरिक जरूरी हैं।
लेकिन फिर वो मशहूर घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया, वो स्लाइड शो वाली कहानी, वो क्या थी?
बिल्कुल, ये उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था, एक तरह का ज्ञानोदय एपिफनी का क्षण। 1906 की बात है, वे क्लास में बैठे थे जब युद्ध से जुड़ी कुछ स्लाइड दिखाई जा रही थी। एक स्लाइड में दिखाया गया कि जापानी सैनिक एक चीनी व्यक्ति को रूसी जासूस होने के शक में सजाए मौत दे रहे हैं, और आसपास खड़े चीनी हमवतन वो बस भावशून्य होकर तमाशा देख रहे हैं, उदासीन।
ओहो, ये देखकर तो रोंगटे खड़े हो गए होंगे उनके।
रोंगटे खड़े होने से ज्यादा उन्हें गहरा आघात लगा। उस उदासीन भीड़ को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि चीन की असली बीमारी शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। लोगों के शरीर का इलाज करने से पहले उनकी आत्मा, उनकी चेतना को जगाना ज्यादा जरूरी है।
उस जड़ता को तोड़ना जरूरी है।
हाँ, उस उदासीनता को, उस जड़ता को तोड़ना जरूरी है। और उसी क्षण उन्होंने फैसला कर लिया कि स्कैल्पेल नहीं, कलम उनका हथियार बनेगी, और तय किया कि वे साहित्य के जरिए चीनी लोगों की आत्मा का इलाज करेंगे, उन्हें जगाएंगे, सोचने पर मजबूर करेंगे। यहीं से झाओ शुरेन के लुशुन बनने की यात्रा शुरू होती है।
तो साहित्य के जरिए चीनी आत्मा का निदान, ये उनका मुख्य लक्ष्य बन गया। उनके प्रमुख विचार क्या थे जिन्हें वे अपनी लेखनी से सामने लाए?
देखिए, उनका सबसे पहला और सबसे तीखा प्रहार था चीन की सामंती परंपरा और कन्फ्यूशियस विचारधारा पर। उन्होंने इसे सिर्फ पुराना या अप्रासंगिक नहीं कहा बल्कि सक्रिय रूप से हानिकारक बताया।
उन्होंने तो इसे मनुष्य भक्षी, मैन ईटिंग तक कह डाला। इतना कठोर शब्द क्यों?
क्योंकि उनका मानना था कि ये सदियों पुरानी परंपराएं, रीति रिवाज और नैतिकता के नाम पर थोपे गए नियम असल में व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी आत्मा को कुचल देते हैं, उसे खा जाते हैं। ये व्यक्ति को सोचने नहीं देते, सवाल करने नहीं देते।
अच्छा।
उनकी पहली आधुनिक कहानी एक पागल की डायरी इसी मनुष्य भक्षी संस्कृति का एक भयानक रूपक है।
और फिर उनका वो प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट आक्यू स्पिरिट, ये क्या चीज थी?
आक्यू, हाँ, ये उनके एक लघु उपन्यास आक्यू की सच्ची कहानी का मुख्य पात्र है। ये पात्र चीनी राष्ट्रीय चरित्र पर एक जबरदस्त व्यंग है।
व्यंग किस तरह का?
आक्यू एक ऐसा इंसान है जो हर हार, हर अपमान को मन ही मन एक आध्यात्मिक जीत में बदल लेता है। वो पिटता है, अपमानित होता है, लेकिन खुद को समझा लेता है कि असल में वो जीता है। मतलब एक तरह का आत्मधोखा।
तो ये एक तरह का राष्ट्रीय आत्मधोखा एक डिफेंस मैकेनिज्म बन गया था, लेकिन ऐसा जो नुकसानदेह था।
बिल्कुल, लू शुन दिखा रहे थे कि कैसे चीनी समाज अपनी कमजोरियों और हार का सामना करने के बजाय इस तरह के आत्मधोखे में जी रहा है। ये आक्यू स्पिरिट राष्ट्रीय अपमान और लाचारी के सामने एक मनोवैज्ञानिक पक्षाघात का प्रतीक बन गई।
इसी जड़ता को तोड़ने के लिए उन्होंने आम बोलचाल की भाषा बाई हुआ पे इतना जोर दिया।
हाँ हाँ, क्योंकि वो मानते थे कि अगर आम लोगों को जगाना है, उन तक नए विचार पहुंचाने हैं, तो उनकी भाषा में ही लिखना होगा। विज्ञानवेन की वो दीवार तोड़कर बाई हुआ को गंभीर साहित्य का माध्यम बनाना जरूरी था, और लूशुन ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई।
और साहित्य की भूमिका पर उनका वो प्रसिद्ध लोहे का घर वाला रूपक, वो बहुत शक्तिशाली है।
हाँ, वो रूपक उनके लेखन के पीछे की नैतिक कश्मकश को दिखाता है। वे अपनी कहानी संग्रह कॉल टू आर्म्स की भूमिका में लिखते हैं कि कल्पना कीजिए, एक लोहे का घर है जिसमें खिड़कियां नहीं, जो पूरी तरह बंद है। अंदर बहुत से लोग गहरी नींद में सो रहे हैं और जल्दी दम घुटने से मर जाएंगे। अब अगर आप जोर से चिल्लाकर कुछ सोने वालों को जगा देते हैं, तो क्या आप उनका भला करें? क्योंकि जागने पर उन्हें अपनी भयानक निश्चित मौत का एहसास होगा।
ये तो लेखक के लिए एक भयानक दुविधा है। क्या सच बोलना हमेशा सही होता है, खासकर जब सच इतना कड़वा हो?
बिल्कुल, इसी दुविधा के बावजूद लू शुन ने चिल्लाने का लिखने का फैसला किया। उन्हें लगा कि झूठी शांति में मरने से बेहतर है कड़वे सच का सामना करना।
सही।
इसके अलावा उनके लेखन में बीमारी का रूपक बार बार आता है। शारीरिक बीमारी, आध्यात्मिक बीमारी, ये सब चीन के सांस्कृतिक पतन के प्रतीक थे, और इन सब के बीच वे स्वतंत्र चिंतन के जबरदस्त हिमायती थे। किसी भी विचारधारा के अंधभक्त नहीं बने, यहाँ तक कि वामपंथी लेखक संघ से जुड़ने के बाद भी अपनी आलोचनात्मक दृष्टि बनाए रखी।
सत्य और नैतिकता पर उनका आग्रह भी साफ दिखता है।
बहुत ज्यादा। उनका मानना था कि स्याही में लिखे झूठ खून में लिखे तथ्यों को कभी नहीं छिपा सकते, और वे मानते थे कि चीन की उम्मीद इस बात में है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो शर्मिंदा होना नहीं भूले हैं, यानी नैतिक चेतना का बने रहना जरूरी है।
इन शक्तिशाली विचारों को उन्होंने अपनी रचनाओं में कैसे उतारा? चलिए उनकी कुछ प्रमुख कृतियों की बात करते हैं। एक पागल की डायरी, 1918 से शुरुआत करें।
बिल्कुल, ये आधुनिक चीनी साहित्य का घोषणा पत्र है कह सकते हैं। बाई हुआ में लिखी गई पहली महत्वपूर्ण आधुनिक कहानी। जैसा हमने बात की, ये पारंपरिक संस्कृति पर मनुष्य भक्षी होने का आरोप लगाती है। इसमें अविश्वसनीय कथावाचक, अनरिलायबल नरेटर का प्रयोग, बीमारी का विषय, ये सब लू शुन की शैली की पहचान बने, और कहानी का अंत एक सीधी मार्मिक अपील से होता है, बच्चों को बचाओ, ज्यो ज्यो हाइज,
यानी आने वाली पीढ़ी को इस सड़ी हुई व्यवस्था से बचाने की पुकार। ये तो वाकई क्रांतिकारी था उस समय के लिए।
हाँ, और फिर आया उनका शायद सबसे प्रसिद्ध काम, आह क्योंकि सच्ची कहानी, 1921-22। ये एक लघु उपन्यास है जिसमें आह क्यों के माध्यम से उन्होंने चीनी राष्ट्रीय चरित्र की कमजोरियों पर ऐसा व्यंग्य किया जो आज भी प्रासंगिक लगता है।
हाँ, आह क्यों का जिक्र तो बार बार आता है।
ये हंसाते हंसाते रुला देने वाली ट्रेजिकॉमिक कहानी है जो आत्मधोखे की परतों को उधेड़ती है। आह क्यों एक पात्र से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया है चीन में।
उनके पहले कहानी संग्रह कॉल टू आर्म्स 1923 में भी कई महत्वपूर्ण कहानियां थीं।
बिल्कुल, इसमें पागल की डायरी के अलावा कोंगी जी है, एक पुराने जमाने के असफल विद्वान की दुखद कहानी, फिर दवा मेडिसिन जैसी कहानियां थी जो अंधविश्वास और क्रांति की निरर्थकता जैसे विषयों को छूती हैं।
और इसी में वो लोहे का घर वाला रूपक था।
हाँ, इसी संग्रह की भूमिका में वो प्रसिद्ध रूपक है। ये संग्रह मई फोर्थ आंदोलन के दौर की बेचैनी और तात्कालिकता को दर्शाता है।
उनका दूसरा संग्रह वॉन्डरिंग पांगहोंग 1926 थोड़ा अलग बताया जाता है, ज्यादा गंभीर।
हाँ, वॉन्डरिंग की कहानियों का मिजाज ज्यादा गहरा है, ज्यादा आत्मविश्लेषणात्मक है। इसमें मोहभंग, अकेलापन, बुद्धिजीवियों के अधूरे सपने जैसे विषय हैं। कहानियां जैसे शराब की दुकान में या मानवाद्वेषी द मिसेंथ्रोप, ये क्रांति के बाद के डिसिल्यूजनमेंट और एक तरह की उदासी को पकड़ती हैं।
अच्छा, और वाइल्ड ग्रास, ये काओ 1927, ये तो गद्य कविताओं का संग्रह, ये कैसा था?
ये लू शुन की सबसे निजी और शायद सबसे गूढ़ रचना है। छोटी छोटी गद्य कविताएं हैं जो सपने, अंधेरा, क्षय, आशा की टिमटिमाहट, स्मृति जैसे विषयों को छूती हैं। शैली बहुत प्रयोगात्मक है, प्रतीकात्मक है।
कहा जाता है ये उनकी पसंदीदा रचना थी।
हाँ, लूशुन खुद इसे अपनी पसंदीदा रचना मानते थे। ये उनके अंदर के कवि और दार्शनिक को सामने लाती है।
कहानियों और कविताओं के अलावा आपने ज़ावलेन का जिक्र किया था, ये क्या चीज थी?
ज़ावलेन, हाँ, ये छोटे तीखे निबंध होते थे, अक्सर समकालीन घटनाओं या बहसों पर सीधी टिप्पणी। लूशुन ने इस विधा को अपना हथियार बना लिया था, खासकर जीवन के अंतिम वर्षों में जब सीधा राजनीतिक लेखन मुश्किल हो गया था।
अच्छा, तो ये तात्कालिक प्रतिक्रिया जैसे थे?
हाँ, एक तरह से। ये ज़ावलेन उनके निर्भीक विचारों और सामाजिक आलोचना का बेहतरीन नमूना है, सटीक और धारदार।
तो कुल मिला के लूशुन की विरासत क्या है, आज वो क्यों महत्वपूर्ण है?
पहली बात तो ये कि उन्हें आधुनिक चीनी साहित्य का संस्थापक माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने बाईहुआ को साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित किया।
हाँ, ये बहुत बड़ा काम था।
बिल्कुल, आधुनिक लघु कहानी को चीन में लोकप्रिय बनाया और विडंबना, व्यंग्य जैसी नई कथा तकनीकों का इस्तेमाल किया। ये सब अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है।
लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनकी छवि का राजनीतिकरण भी तो हुआ, माओ ने उन्हें क्रांतिकारी संत बना दिया।
हाँ, ये उनकी विरासत का एक जटिल पहलू है। कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें सम्मानित तो किया, लेकिन साथ ही उनकी छवि को अपने राजनीतिक सांचे में ढाल दिया। इससे उनके काम की कई परतें, उनकी बौद्धिक स्वतंत्रता, उनकी मानवीय चिंताएं, वो सब दब गईं। उन्हें सिर्फ एक वामपंथी लेखक के रूप में देखा जाने लगा।
ये अक्सर होता है कि महान लेखकों या विचारकों को राजनीतिक खेमे अपने हिसाब से इस्तेमाल करने लगते हैं और उनका मूल संदेश कहीं खो जाता है।
बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात यह है कि सांस्कृतिक क्रांति के बाद चीन में लूशुन का पुनर्मूल्यांकन शुरू हुआ। विद्वानों और पाठकों ने उस राजनीतिक प्रतिमा के पीछे के असली लूशुन, वो मानवतावादी, तीखे आलोचक, आधुनिकतावादी कलाकार को फिर से खोजना शुरू किया।
और आज के लेखकों पर उनका प्रभाव?
आज उनका प्रभाव मोयान, यानलियान के, युहुआ जैसे बड़े चीनी लेखकों पर साफ देखा जा सकता है। वो एक तरह से अनिवार्य रेफरेंस पॉइंट है।
और क्या उनके उठाए मुद्दे आज भी प्रासंगिक है विश्व स्तर पर?
पूरी तरह से। देखिए, परंपरा और आधुनिकता का संघर्ष, व्यक्तिवाद बनाम सामूहिकता, इतिहास का बोझ, विचारधाराओं का खतरा, राष्ट्रीय पहचान की खोज, अंदरूनी गुलामी जिसे वो आक्यू स्पिरिट कहते थे, ये सब मुद्दे आज भी दुनिया भर के समाजों में मौजूद हैं।
हाँ, ये तो है।
उनके पात्र आक्यू और पागल तो चीनी भाषा में मुहावरे बन चुके हैं जो कुछ खास तरह की मानसिकता को दर्शाते हैं।
उनके कुछ उद्धरण जो उनकी सोच की झलक देते हों, वो लोहे का घर वाला तो अविस्मरणीय है।
हाँ, वो तो है ही। आशा पर उनका एक बहुत खूबसूरत कथन है, आशा तो जैसे जमीन पर का रास्ता है, असल में वहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे लोग बार बार उस तरफ चलते हैं एक रास्ता बन जाता है।
वाह, ये तो एक यथार्थवादी लेकिन फिर भी उम्मीद जगाने वाली बात है।
बिल्कुल, और सत्य के प्रति उनकी निष्ठा झलकती है उनके इस कथन में। स्याही में लिखे झूठ खून में लिखे तथ्यों को कभी नहीं छिपा सकते।
और बेशक पागल की डायरी का वो अंत, बच्चों को बचाओ।
हाँ, एक सीधी सरल लेकिन शक्तिशाली नैतिक अपील।
कुछ और रोचक पहलू लूशुन के जीवन या व्यक्तित्व के? हमने उनके असली नाम, कलम नाम, स्लाइड शो घटना की बात की।
एक दिलचस्प बात यह है कि 1936 में उनकी मृत्यु के कुछ ही समय पहले उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था।
अच्छा, मिला उन्हें?
नहीं, उन्होंने इसे स्वीकार करने में कोई रुचि नहीं दिखाई, बल्कि एक तरह से अस्वीकार ही कर दिया। उनका मानना था कि उस समय चीन में कोई लेखक खुद समेत इस पुरस्कार के योग्य नहीं है, और वे नहीं चाहते थे कि तत्कालीन राष्ट्रीयवादी सरकार इस पुरस्कार का राजनीतिक फायदा उठाए।
ये उनकी ईमानदारी और सिद्धांतों के प्रति निष्ठा दिखाता है।
जी बिल्कुल, उनके निजी जीवन में भी काफी उथल पुथल रहीं। पारंपरिक तरीके से हुई शादी ज़ू एन से, जो मुश्किल भरी थी, और बाद में उनका प्रेम संबंध ज़ू ग्वांगपिंग के साथ, जिन्होंने उनके काम में भी सहयोग किया।
और जैसा हमने जिक्र किया, ज़ावलेन लिखने में उनकी महारत और वाइल्ड ग्रास का उनका पसंदीदा होना।
हाँ, उनकी पूरी शख्सियत और विरासत जटिल है। उन्हें पूजा भी गया, उनसे नफरत भी की गई, उनका राजनीतिकरण हुआ, और अब उनका फिर से मूल्यांकन हो रहा है। ये सब दिखाता है कि वे कितने बहुस्तरीय लेखक और विचारक थे।
तो अंत में ये सूचना हाजमी है कि लूशुन ने अपनी कलम को समाज की बीमारियों के निदान के लिए एक सर्जन की छुरी, स्कैल्पल की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने सिर्फ लक्षण नहीं बताए, बल्कि चीर फाड़ करके रोग की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की।
बहुत सटीक उपमा है, और ये हमें आज के संदर्भ में सोचने पर मजबूर करता है। आज हमारे पास सूचनाओं का अंबार है, सोशल मीडिया है, तकनीक है। अपने समय को समझने और उसकी आलोचना करने के लिए हमारे पास कौन से स्कैल्पल्स हैं?
ये बड़ा सवाल है।
और हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या आज के दौर में साहित्य या कला वही भूमिका निभा सकती है जो लूशुन के दौर में निभा रही थी? ये वो सवाल हैं जो लूशुन को आज भी जीवित और प्रासंगिक बनाए रखते हैं।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।